مشاہدہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اس انسان کو آپ مشاہدہ کرنے دیتے ہیں. یہ جو ٹریولنگ ہے یہ ایک بڑا زبردست تعلیمی پیکیج ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمیں اپنا سب سے بڑا پرابلم لوڈ شیڈنگ لگتا ہے. علم کیسے آتا ہے؟ علم کے 7 چینلز ہیں جو ہم بتاتے ہیں. یہ ہمارا پورا, یہ سمجھ لیں کہ ERDC کی پوری ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں. ابھی جو ہم نے یوٹیوب چینل ہمارا بنا ہے وہ ایک طرح سے ہماری آئیڈیالوجی کی ڈیجیٹل لائبریری ہے جس کے اندر بہت سارے موضوعات پر چیزیں الحمدللہ اللہ نے موقع دیا کہ جمع ہو گئیں. علم کیسے آتا ہے؟ علم جو ہے اس کے 7 چینلز ہیں. علم کا سب سے بڑا چینل ہے, علم آتا ہے اصحاب علم سے جڑنے کے نتیجے میں. یہ علم کا سب سے زبردست چینل ہے. روایتی تہذیبوں میں اور یعنی کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی تہذیب میں, یہ علم کا بہت ہی کہہ لیجئے سب سے زیادہ جس چینل پہ انحصار کیا جاتا ہے وہ یہ علم آتا ہے انسانوں اصحاب علم سے جڑنے کے نتیجے میں, اصحاب علم سے جڑنے کے. پھر دوسرا چینل ہے, علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں. ٹھیک ہے, اب یہ جو دو چینلز ہیں آپ دیکھیے, پورا کا پورا دین جو ہے وہ ان دو چینلز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اصحاب علم میں جو سب سے مدینۃ العلم سے جڑنے کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس علم آیا, اور الکتاب سے جڑنے کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس ایمان اور علم آیا. تو علم, علم کے 7 چینلز ہیں. علم آتا ہے اصحاب علم سے جڑنے کے نتیجے میں, علم آتا ہے کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں, پھر علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں. مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں, مشاہدہ کیسے کرتا ہے انسان؟ مشاہدہ انسان اس وقت کرتا ہے جب اس انسان کو آپ مشاہدہ کرنے دیتے ہیں. جس عمر میں کسی بچے کے ہاتھ میں ہینڈ لینس ہونا چاہیے تھا, یا جس عمر میں کسی بچے کو تتلیوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے تھا, اس عمر میں آپ اس بچے کے ہاتھ میں پینسل پکڑاتے ہیں جس سے لکھا ہوا آسانی سے نظر نہیں آتا, وہ گرے کلر کا لکھتی ہے وہ پینسل, لیڈ کی پینسل ہے, اور اس کاغذ پہ لکھواتے ہیں جو کاغذ پوری طرح سفید نہیں ہے, وہ ہلکا سا گریش ہے, اور اس پر وہ آپ اس سے وہ لکھواتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہے. لیٹرز ہیو نو میننگس, ایف ہیز نو میننگ, بے ہیز نو میننگ, جیم کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, مطلب بلی کا ہوتا ہے, مطلب لفظ کا ہوتا ہے. تو معنی ایک لا یعنی عمل میں اس کو مصروف کرتے ہیں. جس عمر میں ہم 2.5 سال کی عمر کے بچے کو پینسل دے کے اس سے ضد کرتے ہیں کہ لائن کے اوپر اس کو گول بنا دو, اس کو سیدھا بنا دو, اس کے اندر ڈنڈی لگا دو, اس پہ نقطے ڈال دو, اس عمر میں کسی بچے کو نکل جانا چاہیے تھا مشاہدہ کرنے کے لیے. مشاہدہ اس وقت ہوتا ہے, مشاہدہ کوئی انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو آپ اپنا ایجنڈا اس پہ مسلط نہ کریں. اگر میں کسی انسان کو کہوں کہ تم یہ کرو تو وہ کرے گا یا مشاہدہ کرے گا؟ تو علم آتا ہے مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں, اور مشاہدہ کسی بچے کا فطری عمل ہے. مشاہدہ غیر فطری عمل نہیں ہے, جیم اور بے لکھوانا اس کے لیے غیر فطری چیز ہے. وہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن بعد میں ہونا چاہیے, اس کی ترتیب ہم نے الٹ کر رکھی ہے. تو ہمارے تعلیمی نظام کا پرابلم ہے نا. پھر علم اور کیسے آتا ہے؟ علم آتا ہے تجربہ کرنے کے نتیجے میں. تجربہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز میں گھسے اور اس کے اوپر ایک اندازہ بنائے, اس کے بارے میں ایک مفروضہ بنائے, اس کے حوالے سے کوئی خیال قائم کرے, اور پھر اس خیال, وہ خیال درست ہے یا غلط ہے وہ کر کے دیکھ لے. مثال کے طور پر ایک ٹیبل کو بچہ دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس ٹیبل پہ چڑھا جا سکتا ہے یا نہیں چڑھا جا سکتا, اور پھر وہ کوشش کر کے اس ٹیبل پہ چڑھ جاتا ہے. تو پہلے اس نے ایک اندازہ لگایا کہ شاید میں اس ٹیبل پہ نہیں چڑھ سکوں گا, شاید نہیں چڑھ سکوں گا تو انشاءاللہ وہ نہیں لگائے گا. جتنا بچہ تو ہے, یہ تو اگر ہم ہوتے تو یہ سوچتے کہ نہیں چڑھ سکوں گا, اور کوئی اور کہتا. پھر ایک موٹیویشنل اسپیکر آتا, وہ کہتا, موٹیویشنل اسپیکر ایک سور پھونکتا ہمارے اندر اور پھر اس کے بعد ہم چڑھنے کی کوششیں کرتے. لیکن بچے کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی, بچے کو کسی قسم کے موٹیویشنل اسپیکر کی کوئی احتیاج نہیں ہوتی. رب کریم نے اس کے اندر یہ پہلے سے ڈالا ہوا ہے. تو وہ میز کو دیکھتا ہے, وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر کچھ کرتا ہے. कुछ करता है, और वो करता है जो वो समझता है कि वो करे। वो गाड़ी को देखता है कि वो मोटर से चल रही है, चाबी से चल रही है, उसको तोड़ के खोल के देखना चाहता है। वो साइकिल को चलाना चाहता है और फिर उसके बाद साइकिल को खड़ी करके उसको उल्टा करके उसके अंदर और चीज़ें देखना चाहता है। तो वो एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहता है, तोड़ के जोड़ के उल्टा सीधा कुछ काम करके। तो इल्म तजर्बा करने से आता है, फिर इल्म आता है सफ़र करने के नतीजे में। ये जो ट्रैवलिंग है ये एक बड़ा ज़बरदस्त तालीमी पैकेज है। कोई सफ़र, शर्त सिर्फ ये है कि वो ख़रीदारी के लिए ना किया जाए, शर्त सिर्फ ये है कि वो चीज़ों की मोहब्बत में ना हो। आइडियली वैसे तो तिजारती सफ़र भी तालीमी होता है, हर तिजारती सफ़र तालीमी सफ़र है, लेकिन अगर कोई सफ़र ऐसा है जिसमें किसी बच्चे को गैर ज़रूरी तौर पर आसाइशों में ना डाला जाए, उस सफ़र को गैर फितरी अंदाज से लग्जरियस ना बनाया जाए, एक ऐसा सफ़र जिसमें आपके खादमीन की फ़ौज आपके साथ ना चले, वो सफ़र यकीनन तालीमी है। वो सफ़र जिसमें चैलेंज और हार्डशिप और अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज़ करने की आप हद से ज़्यादा फ़िक्र ना करें, तो वो सफ़र जिसमें फ़ितरत को देखने का मौका मिल पाए, वो फ़ितरत जिसमें कुछ नई नई चीज़ें हों, तो वो सफ़र तालीमी सफ़र है। तो इल्म कैसे आता है? अब तक मैंने इल्म आता है असाब इल्म से जुड़ने के नतीजे में, इल्म आता है किताबों से जुड़ने के नतीजे में, इल्म आता है मुशाहिदा करने के नतीजे में, इल्म आता है तजर्बा करने के नतीजे में, इल्म आता है सफ़र करने के नतीजे में। फिर इल्म का एक छठा चैनल है, इल्म आता है गौर व फिक्र और तदब्बुर करने के नतीजे में। यानी तदब्बुर जो है, रब करीम ने अफजाइश इल्म का एक इंतज़ाम हर इंसान के अंदर कर रखा है। जो कुछ डेटा उसके पास आया है, जो कुछ मुशाहिदे से उसने अपने अंदर भर लिया है, जो कुछ सफ़र से उसने अपने अंदर जज्ब कर लिया है, जो कुछ पढ़ने के नतीजे में उसने अपने ख्यालों में कह लीजिए घर कर लिया है, उसके ऊपर अब वो गौर करता है, तदब्बुर करता है, तो इल्म की नई नदियाँ फूटने लगती हैं। आप जिसे हिकमत कहते हैं, जिसे बसीरत कहते हैं, वो ज़्यादा पढ़ने के का नतीजा नहीं होता, वो पढ़े हुए पर तदब्बुर करने का नतीजा होता है। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि खाते तो बहुत हैं, सेहत नहीं बनती। तो जिसका डाइजेस्टन अच्छा है उसकी सेहत बनेगी ना, उसके साथ मामला बेहतर रहेगा। बिल्कुल इसी तरह ज़्यादा रीडिंग जो है वो हिकमत की बुनियाद नहीं होती, तदब्बुर जो है वो हिकमत की बुनियाद होता है। तो तदब्बुर करने के नतीजे में इल्म आता है। आप जितना गौर व फिक्र और तदब्बुर करते हैं उतनी आपको रब करीम बसीरत अता फरमाता है, उतना आपको चीज़ों के हवाले से रब करीम क्लैरिटी अता फरमाता है, आपकी निगाह में चीज़ें वाज़े होने लगती हैं। तो ये एक और चैनल है, ये एक इंटरनल कह लीजिए मैकेनिज्म है जिससे नॉलेज जनरेट होती है। और फिर इल्म का जो सातवां चैनल है वो इंसान का अपना वजूद है। इल्म इंसान के अंदर होता है, इंसान इल्म के बग़ैर पैदा नहीं होता, इंसान इल्म के साथ पैदा होता है। इंसान इल्म के हवाले से तही दामन नहीं होता, इंसान मैन इज़ नॉट बॉर्न इग्नोरेंट, मैन इज़ बॉर्न विद नॉलेज। ये जो दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा, आप कभी इसकी बनावट पे गौर कीजिए, ये कैसी ज़बरदस्त दुआ है। एर मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए। इजाफा उसी चीज़ में होता है जो पहले से मौजूद हो, नहीं तो आप कहेंगे मुझे इल्म दे दीजिए, मैं मेरे पास इल्म ही नहीं है, मुझे इल्म अता कीजिए। इल्म में इजाफा फरमाइए, इसका मतलब है इल्म आपके पास था, आपके पास इल्म है। एक बच्चे को जब कोई चीज़ तकलीफ़ देती है, आप किसी बच्चे को पिन या उसका हाथ किसी सुई से चुभ में चुभ जाए या उसको किसी गर्म चीज़ से टच हो, तो वो खुद ही हाथ हटाता है या आप उसे बताते हैं इस पे से हाथ हटा लो नहीं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, वो खुद ही हाथ हटा लेता है, इसलिए कि उसको पता है। ये इल्म उसके वजूद के अंदर है, वो इल्म के बग़ैर उसका जो वजूद है, रब्बे करीम ने जिस हस्ती को अपना नायब करार दिया उसके वजूद में इल्म पहले से रखा, फिर उसको इक्तसाब इल्म पर आमादा किया। रब्बे करीम का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि रब्बे करीम ने हमें इल्म के बग़ैर पैदा नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात ये, हमारी फितरत में तजस्सुस इस तरह रख दिया कि अफजाइश इल्म का और तहसील इल्म का या इक्तसाब इल्म का एक मुस्तकिल इंतज़ाम मौजूद हो जाए। तो ये एक सूरत रखी। जैसे आपसे यानी कुरान बड़ा वाज़े तौर पर यह बताता है कि आपकी रूहों से, हम सबकी रूहों को जमा करके हमसे पूछा गया कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। ये सवाल ये बता रहा है कि हमें मालूम है कि आप हमारे रब हैं। हम ये सवाल किससे करते हैं, ये इस सवाल की बनावट क्या बताती है? अगर हम किसी से कहें बताओ क्या आज फला दिन नहीं है, तो जब हम किसी से ये सवाल करते हैं तो इसके अंदर ये मुजमिर होता है, उसके अंदर ये इम्प्लिसिट होता है कि पूछने वाला जिससे ये सवाल किया जा रहा है वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि आज कौन सा दिन है। तो जब रब करीम बंदों से पूछता है कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये है। और ये रूहों को, जब रूहों से ये पूछा गया, तो ये जो हमारी रूह के अंदर इल्म का एक, यानी हमारी जो रूह की सतह पर भी हम इल्म रखते हैं, हमारे अंदर एक इल्म है। और असल में दीन के पैराडाइम में हिक्मा और इल्म उसे कहते हैं, इल्म की वो बूंद जो रब्बे करीम ने हमारी तख्लीक में टपकाई थी। हर इक्तसाब उस बूंद से मुत्तसिल होता चला जाए और जो कुछ भी नॉलेज आपने हासिल की है वो एक वहदत की शक्ल इख्तियार कर ले, इसको दीन के पैराडाइम में इल्म कहते हैं। अगर कोई कंटेंट उससे गैर मुत्तसिल रहे तो दीन के पैराडाइम में उसे जहल कहते हैं। वो इंसान जिसको किसी ने कोई तालीम नहीं दी, वो तमीज़ खैर व शर रखता है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, आपके अंदर रब्बे करीम ने इल्हाम कर दिया तमीज़ खैर व शर, रब्बे करीम ने आपके अंदर इल्हाम कर दिया। तो इंसान जो है वो अपनी ज़ात पे गौर करके, इंसान अपना मार्फत हासिल करके, इंसान अपने ऊपर यानी जिसे हम कहते हैं सेल्फ़ अवेयरनेस भी इल्म का एक चैनल है, अपने बारे में आगही हासिल करना, अपने ऊपर अपने आप को दरियाफ्त करते रहना भी इल्म का एक चैनल है। तो इल्म के सात चैनल हुए, इल्म आता है असाब इल्म से जुड़ने के नतीजे में, इल्म आता है किताबों से जुड़ने के नतीजे में, इल्म आता है मुशाहिदा करने के नतीजे में, इल्म आता है तजर्बा करने के नतीजे में, इल्म आता है सफ़र करने के नतीजे में, इल्म आता है और गौर व फिक्र और तदब्बुर करने के नतीजे में, और इल्म आता है अपने वजूद पर गौर करने, अपने आप को दरियाफ्त करने के नतीजे में। इल्म हमारे अंदर मौजूद है, हम इल्म के बग़ैर पैदा नहीं हुए, इल्म हमारे अंदर रखा गया है। इल्म का वो ख़ज़ीना जो हमारे अंदर रब्बे करीम ने रखा था, उससे मुतालिक हो जाने, उससे मुत्तसिल हो जाने, उसको दरियाफ्त कर देने से हमारे अंदर इल्म का एक बहुत बड़ा चश्मा जारी हो जाता है। तो ये इल्म के 7 चैनल्स हैं। अब ज़रा सोचिए हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर क्या किसी बच्चे को इल्म के इन चैनल्स में से किसी चैनल से हम मुतालिक कर पाते हैं? हमारा बच्चा, वो इंसान जिसने मास्टर्स किया है, वो इंसान जिसने PhD किया है, वो इंसान जिसने MPhil किया है, या चलें BA किया है, BCom, O-Level, A-Level किया है, हम कह सकते हैं कि इसने इतने असहाब इल्म से ताल्लुक़ हासिल किया? जिन इंसानों से उसका ताल्लुक़ बना उनमें से बेशतर नफ्सियाती तौर पर अनफिट थे। मार्क ट्वेन का बड़ा ख़तरनाक जुमला है, मार्क ट्वेन कहता था, आई वेंट टू स्कूल फॉर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब टीचर्स। यानी मौलिम की नफ्सियाती सेहत बच्चे का हक है या नहीं है, एक सवाल है। यानी मौलिमा या मौलिम जो है उनको अपने जज्बात पे काबू हो, वो आसानी से मायूस ना हो, उनके अंदर उम्मीद की शमा जिंदा रहे, वो खामखा डिप्रेस होने की मरीज़ा ना हों, वो गुस्से में आपे से बाहर ना आती हों, उनको खामखा उल्टे सीधे ख्याल ना सताते हों, नफ्सियाती सेहत मौलिम की, टीचर की साइकोलॉजिकल फिटनेस स्टूडेंट का हक है या नहीं है? या किसी भी इंसान को आप खड़ा कर देंगे और कहेंगे जो चाहे इनके साथ करो? तो ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है ना। इसी तरह अम्मा अब्बा का भी यही मामला है, वालदैन का भी यही मामला है। इस वक्त तो आप देखिए कि उसको हमने इम्तहान से जोड़ा है, ऐसा लगता है जैसे इल्म आता है इम्तहान देने के नतीजे में, इल्म से बेजारी पैदा होती है इम्तहानात का निज़ाम इंट्रोड्यूस करने के नतीजे में। हमने बहुत सारे स्कूलों और इंस्टीट्यूशंस में हमारे स्टूडेंट्स जाते थे और बहुत सारा उनका कोर्स वर्क था, उनके प्रोजेक्ट्स थे, उसके लिए वो अपना काम के लिए जाते थे। तो एक ज़बरदस्त फाइंडिंग एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर, करिकुलम के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ के ऊपर, पब्लिक पॉलिसी, प्राइवेट स्कूल पॉलिसी, इस तरह की चीज़ों पर बहुत रिसर्च वर्क हुआ। तो एक फाइंडिंग्स ये हुई कि जब हमारे स्टूडेंट्स गए एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर एक रिसर्च में, और उन्होंने कराची के स्कूल्स को विजिट किया, तो हमने दो तरह के स्कूल्स चूज़ किए थे। एक वो जहाँ पर हमारे अंदाजे के मुताबिक फॉर्मल एग्ज़ाम्स पर फोकस नहीं है, और वो एक दूसरी तरह का सिस्टम बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स जहाँ कम से कम हो या ना हो फॉर्मल। दूसरे टाइप के वो स्कूल्स थे जहाँ जो ज़रा ज़रा कन्वेंशनल किस्म के, और जहाँ फॉर्मल एग्ज़ामिनेशन बहुत अर्ली एज से नंबरों वाला इम्तहान होता था, 100 में से इतने नंबर वाला क्लास 1 से। इन दोनों टाइप के इंस्टीट्यूशंस में हमारे स्टूडेंट्स गए, तो हमने एक बड़ी अजीब फाइंडिंग देखी। हमने देखा कि जहाँ हमारा हमें पता है कि वहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके हेड्स ने भी जब अपनी जो डेटा शेयर किया और अपनी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अपनी बात की, तो उन सब ने एग्ज़ाम के हवाले से बड़ा डिफेंसिव स्टैंड अपनाया। ज़्यादातर ने, उन्होंने कहा कि हाँ लेकिन बस वो अभी हम ख़त्म कर रहे हैं। किसी ने कहा कि हम तो, मतलब बाज़ लोगों ने एग्ज़ाम ले रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब एग्ज़ाम हमारे यहाँ नहीं होते। या वो उन्हें, चूंकि उस एग्जामिनेशन का जो कर्स है वो उन्होंने रियलाइज़ किया, और वो कैसे रियलाइज़ किया, इसलिए के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सख्त तनकीद हुई। हमने हल्के हाथ से तनकीद नहीं की। आप एग्ज़ाम के ऊपर हमारी तनकीद अगर उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि चीखें निकल जाएंगी उन लोगों की जिन्होंने एग्ज़ाम लिए हैं। वो कहेंगे हमने तौबा करते हैं, माफ़ी माफ़ी, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद की। इसके ऊपर लिखा भी गया, उसके ऊपर काम भी हुआ, और उसके ऊपर बिल्कुल इम्पेरिकल एविडेंसेस हैं। मतलब बच्चे से आपने, 5 साल के बच्चे से, 8 साल के बच्चे से, 6 साल के, 7 साल के बच्चे से आपने इस तरह एग्ज़ाम्स लिए, और उसके नतीजे में आपने उसके उसके साथ किया क्या, उसका कोई, तो उसके नतीजे में स्कूल्स का स्टैंड ये था कि नहीं हम तो नहीं ले रहे एग्ज़ाम, नहीं, हमारे यहाँ एग्ज़ाम नहीं होते, नहीं हमारे यहाँ एग्ज़ाम नहीं होते, उनका ये स्टैंड था। और उसके नतीजे में उन्होंने एग्ज़ाम्स लेने छोड़े भी। कई 100 स्कूल्स ऐसे हैं, आप आज से 15 साल पे पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, आपको पता लगेगा नर्सरी केजी में भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे। पाकिस्तान के अंदर अभी भी ऐसे स्कूल्स हैं जो 3.5 साल और 3 साल और 4 साल के बच्चे के 100-100 नंबर के पर्चे लेते हैं, 50-50 नंबर के पर्चे लेते हैं, आधा एक घंटा बिठाते हैं और वो एग्ज़ाम नंबरों वाला एग्ज़ाम लेते हैं उसका। तो बहुत बड़ी, कम से कम इसको उन्होंने कभी ही जानना तो शुरू किया। इसके इसके ऊपर उनके दिल में ये बात तो आई कि ये अमल बहुत ही ख़राब अमल है जो मैं खामखा कर रहा हूँ। ये इस वक्त की सूरत है। हम तो इल्म के साथ मुखलिस नहीं हैं। मौजूदा तालीमी निज़ाम एक अलग बॉल गेम है, और इल्म का इक्तसाब, इल्म की कदरदानी, इल्म दोस्ती एक बिल्कुल अलग बॉल गेम है, बिल्कुल अलग बॉल गेम है। और इसको हमें समझना चाहिए, इस पर क्वेश्चन करना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम ये जो 7 चैनल्स हैं इनको हम कहें कि भाई मेरा बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो असहाबे इल्म से ताल्लुक़ में आ गया है, वहाँ वो उनके साथ बातें करता है, वो इस तरह के मुशाहदात करता है, वो इस तरह के तजर्बात करता है, वो इस तरह का गौर व फिक्र करता है, उसके जहन में सवालात पैदा होते हैं, उनके सवालात, उसके जहन में उगने वाले या पैदा होने वाले सवालात पे कोई इंसान बुरा नहीं मान रहा, लोग खुश हो रहे हैं और लोग बड़ी कदरदानी कर रहे हैं कि अच्छा सुभान अल्लाह आपके बच्चे ने ऐसा सवाल किया जो हमें कभी ख्याल ही नहीं आया, तो आपने तो बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। यहाँ उल्टा हो रहा है। स्कूल जो है वो वालदेन को कॉल करता है और कहता है कि भाई अपने बच्चे को समझाइए, ये बहुत सवाल करता है, इसने इतने सवाल किए हैं कि मैं पढ़ाना, मतलब हम पढ़ा रहे होते हैं, सवाल हैज़ बिकम, क्वेश्चन हैज़ बिकम एन ऑब्स्टिकल टूवर्ड्स लर्निंग। ये यानी सवाल इल्म की कुंजी थी, सवाल आधा इल्म था, सवाल बड़ी मुबारक बात थी, सवाल रब करीम की अता थी, सवाल खुदा की तौफीक से इंसान के जहन के खे हमारे जहन के खेत में उगने वाला एक बहुत मुबारक कोपल समझा जाता था, एक बहुत मुबारक कली थी जिसके अंदर इल्म पैदा होगा। तो सवाल के बारे में मौजूदा सोसाइटी इज़ नॉट वेरी अप्रिशिएटिव, मतलब हम उलझने लगे हैं। तुम हर वक्त सवाल ही करते रहोगे या कुछ सीखोगे? तुम पूछते ही रहोगे? बंद करो अपने सवाल और करो वो जो मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे जीम का पेट गोल नहीं हुआ है, मीम की डंडी सीधी करो, लाइन के ऊपर एम को लाइन से ऊपर लिखो, फला को लाइन से नीचे करो, ये लाइन से ऊपर लाइन, ये जो लकीर की फकीरी इसको हम कह सकते हैं, इसको हम लकीर पीटना कह सकते हैं। तालीमी निज़ाम लकीरें पीट रहा है। अल्लाह ताला हमें इस पे माफ़ करे, और अल्लाह ताला हमें अपने तालीम तरबिया के मामलात को सही करने का, हमें हमें फहम भी अता करे, हमें हिम्मत और जुर्रत भी अता करे, हमें हमारे अंदर वो हौसला भी अता करे कि हम भेड़ चाल से मतलब कम से कम हम भेड़ चाल से उकता तो जाएं, अगर हम इससे भिड़ नहीं जाते तो। आइडियली तो हमें भेड़ चाल से भिड़ जाना चाहिए, लेकिन हम भेड़ चाल से उकता भी नहीं, बेजार भी नहीं हो पा रहे हम हर्ड मेंटालिटी से। महसूस होता है एक रेवड़ है जो चले जा रहा है, और आप कहते हैं कि अब वो इंसान जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आइडियली उसे ब्रांड कॉन्शियस होना चाहिए या जाहिल को ब्रांड कॉन्शियस होना चाहिए? आपके ख्याल में ब्रांड कॉन्शियसनेस का मर्ज पढ़े लिखे में ज़्यादा है या अनपढ़ में ज़्यादा है? पढ़े लिखे में ज़्यादा है ब्रांड कॉन्शियसनेस। तो ये मतलब इल्म हासिल करने का ये नतीजा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? वो लड़की या वो लड़का जो आला तालीम याफ्ता हमारी सोसाइटी में है, वो ज़्यादा सादगी से शादी और वलीमा करेगा या वो लड़की या वो लड़का जो बहुत कम तालीम याफ्ता है? आप सोचिए ज़रा, वो लड़की और वो लड़का जो बहुत आला तालीम याफ्ता है और बहुत बड़ी तनख्वाह लेता है, वो अपने वालदैन को अपने साथ रखेगा या उन्हें ओल्ड एज हाउस में मुंतकिल करेगा? और वो जो जाहिल है वो उनको अपने साथ रखेगा या ओल्ड एज हाउस में भेजेगा? इम्कान किस चीज़ का ज़्यादा है? आप सोचिए। तो हमारी तालीम कर क्या रही है? हमें इस पर क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, हमें इस पर बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। हम अपने तालीमी मामलात पर उस दर्जे की परेशानी में मुब्तला नहीं हुए जिस दर्जे की परेशानी में हमें मुब्तला होना चाहिए। हम नहीं हुए परेशान, हम बिल्कुल आँख बंद करके, हमें लग रहा है बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ऐसी यही तालीमी शरबत पूरी कौम को पिलाते जाओ और सुलाते जाओ और सुलाते जाओ और सुलाते जाओ। इसके अलावा हमें यानी तालीमी मौजूदा तालीम की हैसियत एक भंग की तरह है। हर इंसान उसको पिए जा रहा है और सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, सोए, पूरी कौम सो गई है। हमें इस पर कम से कम सोचना चाहिए कि हम ये कर क्या रहे हैं, हमारे तालीमी निज़ाम के मसाइल क्या हैं। आप ये आप महसूस करते हैं इसका? तो बहरहाल हम ये समझते हैं कि, और ये काम बहुत आसान है, हर इंसान मुरब्बी कौन होता है, मुरब्बी कैसे बनते हैं, माशरे में मुरब्बी कौन लोग हैं, उनसे जुड़ें, मुरब्बियों से जुड़ें, और मुरब्बी बनने की फ़िक्र और मुरब्बी बनने की तमन्ना अपने अंदर पैदा करें, अपने आसपास के लोगों को खैर और इल्म की बातें करें। इम्तहानात की बातें सानवी चीज़ है, उनसे कहें ये हमारी माशरती मजबूरी है कि हमें इम्तहानात देने, वो दे देना, लेकिन इल्म हमारे माशरे की बहुत बड़ी जो ज़रूरत है, मैं उसे तीन ज़रूरियात कहता हूँ, इल्म, ईमान और इखलाक, ये हमारे माशरे की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी की सबसे बड़ी ज़रूरत या सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोड शेडिंग नहीं है, पाकिस्तानी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला डैम नहीं है, पाकिस्तानी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला गवादर नहीं है, पाकिस्तानी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये नहीं है कि हमारी ट्रैफिक जैम होता है हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ सड़कें ठीक नहीं है, या हमारे यहाँ पुल नहीं है, या हमारा एयरपोर्ट अच्छा नहीं है, या हमारे यहाँ ट्रेन स्लो चलती है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है कि हमारी ट्रेन स्लो चलती है, ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ बिजली की कुछ मसले हैं, ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ठीक है ये हमारे बैंकिंग सिस्टम के मसाइल हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल होंगे, हमारे एयरपोर्ट के, रेलवे स्टेशन के, हमारी सड़कों के, ट्रैफिक जैम के, ये भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम हमारे ये हैं ही नहीं। हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं उनका नाम है ईमान की कमी, इल्म की कमी और इखलाक की कमी। मसला सारा ये है कि हमें अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोड शेडिंग लगता है, हमें अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि हमें सड़कों के अच्छा नेटवर्क नहीं है ना हमारे यहाँ, हमारे यहाँ अच्छे ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, शायद ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारा सीवरेज सिस्टम सही हो जाएगा तो ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारे नफ्स जो गलाजत से भर गए हैं उनको ठीक होना हमारे सीवरेज सिस्टम के ठीक होने से ज़्यादा ज़रूरी है। हमें यानी हमारे नफ्स की आलूदगियों का सद्देबाब होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये भी ठीक है कि हमारे गटर बह रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कैरेक्टर क्राइसिस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ईमान की कह लीजिए कमज़ोरी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इल्म की कमी। इसको हम प्रॉब्लम तस्लीम नहीं कर रहे, हम किसी सतह पर इसको अपना प्रॉब्लम तस्लीम नहीं कर रहे, हम किसी सतह पर ये बात नहीं कर रहे कि हमें इल्म, इखलाक और ईमान की ज़रूरत है और ये हमारे तालीम के अंदर, हमारे तरबिया के अंदर इसको लाने की ज़रूरत है। चाहे महंगा स्कूल हो चाहे सस्ता स्कूल हो, आप उसमें 10 साल भेजें, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में 10 साल 15 साल लगा दें, लेकिन उसके बावजूद आप इस बात की ज़मानत नहीं दे सकते कि ये जो तालिब इल्म इससे निकला है इसके पास इल्म होगा, इखलाक होगा, ईमान होगा। हम इस जगह नहीं खड़े, उसके पास डिग्री होगी खाली। तो कितनी अजीब बात है। इस पे हमें परेशान होना चाहिए क्या ख्याल है, और इस पे क्वेश्चन उठाना चाहिए।